सागर धर्मामृत लेक्चर नंबर 16। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वैच्छायाणं, नमो लोये सव्वसाहूनं। अथ नत्वार्हतो क्षूण चरणान् शमनानपि तद्धर्मरागिणां धर्म सागाराणां प्रणेशते। पंडित श्री आशाधर जी लिखित यह सागर धर्मामृत नामक ग्रंथ है। इसमें श्रावकाचार्य की विशिष्ट यहाँ उसकी चर्चा की हुई है। 28 नंबर का हमने श्लोक पढ़ा था, उसके नीचे पढ़ेंगे। मिलस आगे कहते हैं, ये अलग अलग जो नित्यमह महामह कल्पद्रुम इंद्रध्वज पूजा उनका यहाँ वर्णन चल रहा है। आगे कहते कि उपहार अभिषेक आदि जो जिन पूजा के भेद है उन सब का अंतर्भाव इन्हीं नित्यमह आदि में होता है। इन्हीं पूजा के जो प्रकार बताए हैं उन्हीं में ये सब बातें गर्भित हो जाती है। 29 नंबर का श्लोक ऊपर पढ़ेंगे। बलि स्नपन नाट्यादि नित्यं नैमित्तिकं च यत् भक्ताः कुर्वन्ति तेष्वेव तद्यथा स्वं विकल्पयेत्। जिनेन्द्र भगवान के भक्त श्रावक प्रतिदिन या पर्व के अवसरों पर जो उपहार अभिषेक गीत नृत्य आदि करते हैं वे सब यथा योग्य उन्हीं नित्यमह आदि में अंतर्भूत होते हैं। अर्थात जिनेन्द्र भगवान को लक्ष्य करके जो भी भक्ति प्रदर्शित की जाते हैं, चाहे वह भेंट रूप में हो या गीत नृत्य आदि के रूप में हो। भेंट देना इन्हें भी मंदिर के लिए कुछ वस्तुओं का उसके लिए उपहार करते होता है भेंट। विद्वान उन सबको नित्य पूजा आदि के ही भेद मानते हैं। मंदिर की वस्तुएं कुछ भेज देना या कहो अन्य अन्य चीजें वहां, उसको उपहार कहेंगे। आगे प्रत्येक जलादि पूजा का फल कहते हैं, यानी जो अष्टद्रव्य से पूजन की जाती है जल चंदन अक्षत पुष्प आदि, उसका यहाँ फल बता रहे हैं। देखो यहाँ अभी यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं कि पूर्व काल में मध्य युग में तो उसके लौकिक फलों की बात करते, उसके बाद जो रचनाएं हुई उसमें तो आध्यात्मिक उसका जो फल है उसको बताने की पद्धति शुरू हो गई। हम पढ़ेंगे यहाँ। अरहंत भगवान के दोनों चरणों में विधि पूर्वक अर्पित की गई जल की धारा पूजा करने वाले के पापों की शांति के लिए होती है। ऐसा जब हम पढ़ते हैं तो जो मन अशांत है किसी कारण या किसी रोग के कारण या किसी अन्य दुर्घटना के कारण, और लोग क्या सोचते हैं कि वहां भगवान के ऊपर धारा जल की डालेंगे और हमें शांति हो जाएगी। इसे पूछते भी है कि अब कोई ऐसा मंत्र बता दो, ऐसा कोई उपाय बता दो कि हमें शांति मिल जाएगी।
हाँ, आपके पास कोई शांति मंत्र है? हाँ, शांति प्राप्त हो,
क्योंकि शांति मंत्र नाम का मंत्र भी प्रचलित है जो जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक के उपरांत वो जल की धारा उनके मस्तक पर घर के वो शांति मंत्र बोला जाता है। परंतु ऐसी मान्यता कि यहाँ शांति मंत्र बोलने से मुझे शांति हो जाएगी, शांति तो तभी होगी जब तत्वों का निर्णय है, उसकी कुछ मालूमात है, और शांति वो अपने में है, वो अपने से प्रकट होगी, बाह्य से नहीं होगी। परंतु ये मंत्रादि जो है उसका उपयोग क्यों कहते हैं, तो ये मन को स्थिर करने के लिए, मंत्र में जो बोला है अगर उसका अर्थ मालूम नहीं है तो केवल शब्दों के उच्चार से तो कुछ होने वाला नहीं है। नमोकार मंत्र कहो या सिद्धों का नाम स्मरण कहो, कहते नाम स्मरण से भी संकट टल जाते हैं। कब हम सिद्धों का गुणगान करेंगे, उनका नाम लेंगे और सिद्धों का स्वरूप हमें भाषित होगा, वो सर्वज्ञ के स्वरूप के ऊपर हम विचार करेंगे, उसको लक्ष्य में लेंगे तो शांति मिलेगी। तो केवल कोई क्रिया करने से शांति मिलेगी ये मान्यता चल रही है। और केवल
कार्य करता है, कर सकता है, ऐसी जो जीव की खोटी मान्यता है उसको हम कहेंगे मिथ्या मान्यता है। तो कुछ न कुछ करने से हमें शांति प्राप्त होगी, भगवान का नाम लो तो शांति प्राप्त होगी, या कोई मंत्र कहो तो मुझे बोलो तो मुझे शांति होगी। ये मान्यता बड़े बड़े जिसको हम कहेंगे वेल लर्नेड लोगों की है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब ऐसी कुछ आतुरता होगी किसी कारणवश, कारण माने कर सकते हैं, तो उस समय अपने स्वरूप में गुप्तता हो जाएगी, स्वरूप में एकाग्रता हो जाएगी, तो वहां आतुरता रहेगी नहीं, तो उस समय सुख की प्राप्ति होती तो कहेंगे शांति की
प्राप्ति। ज्ञान और शांतिमय अपना स्वरूप है, उसका लक्ष्य करने से पर्याय में शांति प्रकट होगी।
ये जो कहते हैं मैं ज्ञान आनंद स्वभाव ही हूँ, तो अपने आत्मा का अनुभव आनंद नहीं होगा क्या? आतुरता कहाँ रहेगी? लेकिन ये बात का एहसास नहीं है, खात्री नहीं है, विश्वास नहीं है, तो कुछ करूं तो मुझे शांति प्राप्त होगी। क्या अभी अभी दो चार दिन की बात है, इसलिए बहुत मुश्किल था बात। फोन कर रहे हो भाई, तो हमने कहा हमारे पास ऐसा कोई मंत्र मंत्र नहीं, एक बार भी फोन किया।
इन्हें अच्छे स्वाध्याय करने वाले कोई है, उन्होंने फोन करके पूछा कि ऐसे ऐसे तकलीफ हो रही है, आप कोई मंत्र बता दो, अर्जेंट है, बहुत अशांति हो गई है। इसलिए
ऐसा मंत्र का महत्व बताने वाले अन्य कोई मिले होंगे, तो हमारे पास भी कोई मंत्र होता तो हमको देना चाहूंगा, हमने कहा वो
इंसान। यहाँ हम 74 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं आशा जी, मिला तो 74 नंबर पेज एकदम लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। ये जो जलादि से पूजा की जाती है उसका यहाँ फल बताने जा रहे हैं। अरहंत भगवान के दोनों चरणों में विधि पूर्वक अर्पित की गई जल की धारा पूजा करने वाले के पापों की शांति के लिए होती है। और ऐसा ये इस पर से वो बात निकली, यहाँ तो लिखा है ना हाँ, परंतु तब हमने अरिहंतों का स्वरूप निश्चित करेंगे, सर्वज्ञ का स्वरूप निश्चित करेंगे, अपना ज्ञान स्वभाव निश्चित करेंगे, और फिर उनके प्रति हमें आहो भगवाना है तो जल चंदन आदि चढ़ा देते हैं, तो उसकी बात है।
यहाँ हमने आपको पहली बार बताया था कि उस जमाने में जिस समय ये क्या नाम है आशा देवी हुए, उस समय ये दोनों ही धारा चल रही थी, उनसे पूजन के साथ पूजन जो होते यानी जल चंदन आदि वो लेके पूजन करे, जो साक्षात फल है फूल है उसके साथ, वो उसके लिए ये जो उन्होंने जो मत लगाया है वो भी प्रचलित था उस समय,
वो तो पहले से चला आया था और फिर बाद में उसमें सुधार किया गया, क्योंकि जहाँ हिंसा टल सकती वहाँ टालने की अपेक्षा से। देखो अभी यहाँ पढ़ेंगे हम क्या क्या लिखते हैं। उत्तम चंदन पूजक के शरीर की सुगंध के लिए होता है, अखंड तंदुल पूजक के अणिमा आदि विभूति, ये कभी सुनी है कि अणिमा आदि विभूति किसमें होती है? वैकिरिक शरीर में होती है अणिमा, अणिमा ने अणु जैसा यानी बहुत हल्का शरीर बनाना, तो भारी शरीर बनाना, हल्का बनाना, इस तरह से छोटा बनाना बड़ा बनाना, ये उनके जो विशिष्ट उनकी शक्तियां होती है वैकिरिक शरीर में। अथवा धन संपत्ति के नष्ट नहीं होने के लिए, ऐसा पढ़ते हैं तो क्या इस फल के लिए चढ़ाना है? तो ये तो हो गया ना, लोभ के वश होकर हमने कुछ माने वहां थोड़ा रखेंगे तो हमें बहुत सारा मिलेगा, क्यों वहां थोड़ा अक्षत चढ़ाना तो हमें बहुत सारे धन संपत्ति मिलेगी, हमारा धन नष्ट नहीं होगा, भोले लोग तो ऐसा ही मानते हैं। ये सदा बने रहने के लिए होते हैं, देखो ये तो भगवान का नाम स्मरण करना, उनके गुणों के अनुराग से उनकी भक्ति करना, ये तो सहज पुण्य बंध का कारण है। और उससे पुण्य बंध से ये ऐसे लौकिक फल सहज होते हैं, परंतु उसके लिए जो पूजा करता है उसके तो पाप का बंध हो जाएगा। हाँ थोड़ा पुण्य बंधेगा परंतु ऐसा नहीं बंधेगा, क्योंकि मिथ्या तो रखा है और साथ में थोड़ा सा पुण्य है, तो उससे क्या फल मिलने वाला है। पुष्पों की माला स्वर्ग में होने वाली मंदार वृक्ष की माला की प्राप्ति के लिए होती है। हमने सुना है ना वहाँ मंदार वृक्ष के फूलों से वो माला गले में होती है, वो लास्ट में जाके मुरझाती है, आपने सुना होगा। नैवेद्य लक्ष्मी का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए होता है, दीप कांति के लिए होता है, धूप पूजक के परम सौभाग्य के लिए होती है, और फल इष्ट अर्थ की प्राप्ति के लिए होता है। इष्ट ने हमें जो चाहिए ऐसी ऐसा फल हमें मिल जाता है, और अर्घ पूजा विशेष के लिए होता है, विशेषार्थ।
लेकिन ऐसी बात मैंने जब भी पूजन होते हैं, जब बड़ा चढ़ा के भी कहते हैं, तो उसके लिए भी आस्था लोगों की।
देखो एक तो बात होती है कि घर से निकला पूजन के लिए तो उतना उसको इतने फल का उपवास का फल मिला, वो साक्षात मंदिर तक पहुंचा और ध्वजा देखी तो उसको इतने उपवास का फल मिला, ऐसे ये कथन पद्धति है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो अभी मंदिर में भी आने के लिए राजी नहीं है, अभी नहीं आ रहा है, उसको तो लोभ उत्पन्न करके भी, ये कषाय है लोभ, लोभ उत्पन्न करके भी उसको धर्मानुराग उत्पन्न कराया जाता है। मंदिर में आओ, पूजा करो, इस तरह से अष्टद्रव्य से पूजन करो, तो उसका एक अवलंबन होता है, फिर भगवान की मूर्ति देखता है, फिर इतना जो करता है तो उसको कहेंगे फिर जाके स्वाध्याय करो, इससे कुछ नहीं होने वाला। जो जिस स्टेज पर है वहां से उसको ऊपर उठाने के लिए बात है। एक कार्तिकेय प्रेक्षा में लिखा है कि कषायों की उत्पत्ति करके भी जीवों को धर्म का उपदेश दिया जाता है या धर्म के मार्ग में लगाया जाता है। जैसे ये संसार शरीर भोग वो तो जुगुप्सा उत्पन्न करते हैं, ये शरीर तो कैसा घिनौना है, सप्त धातु से मना है बना है, ये मलमूत्र का द्वार, ऐसे आदि आदि बातें बताकर इसके प्रति घृणा उत्पन्न करके जीव को अपना स्वरूप बताया जाता है। वहां कषाय उत्पन्न कराना प्रयोजन नहीं है, संसार का भय भी दिखाते हैं कि ये कैसे चतुर्गति में कितना जीव ने भ्रमण किया, तो डर लगता है ना। हाँ डर लगता है तो अच्छा है, संसार से डर लगा जन्म मरण से, तो इसके प्रति कुछ रुचि पूर्वक पढ़ेगा सुनेगा उपदेश ग्रहण करेगा, इसको बस उसी उतने ही में ले लेना बिल्कुल। ये 30 नंबर हमने पढ़ा, पर हमने ऊपर उसका श्लोक नहीं पढ़ा था, अभी ये पढ़, ये हो गया ना हमने अर्घ पूजा विशेष के लिए होता है, श्लोक अभी पढ़ लेते हैं। 74 पृष्ठ पर वारधारा रजस शमाय पदयो सम्यक प्रयुक्तार्हत सद्गंध स्तनु सौरभाय विभवाच्छेदाय संत्यक्षता यष्ट्युस्रग दिव्यस्रजय चरु रुमा स्वाम्याय दीपस्त्विषे धूपो विश्वद्रुगोत्सवाय फलमीष्टार्थाय चार्घाय स। इसका अर्थ अभी हमने पढ़ा, अभी इसी का विशेषार्थ। सोमदेव ने अपने उपासकाचार में अष्ट द्रव्य से पूजा का विधान तो किया है, ये यहाँ 3 नंबर लिखा ना नीचे, अम्भ अम्भय ने पानी, अम्भश चंदन तंदुल उद्गम उद्गम हवि उद्गम उद्गम हवि दीप ही सदूप ही फल ही अर्चित्वा त्रिजगद्गुरु जिनपतिम स्नानोत्सवानंतरम। स्नानोत्सव ने अभिषेक के पश्चात हमको ये पूजा करनी चाहिए अष्टद्रव्य से। तो कहते उन्होंने विधान तो किया है, किंतु प्रत्येक पूजा का अलग अलग फल न बतलाकर पूजा मात्र का सामान्य फल कहा है जो पूजक के शुभ भावना रूप है। जैसे हे भगवान, जब तक इस चित्त में आपका निवास है तब तक सदा जिन भगवान के चरणों में मेरी भक्ति रहे, मेरी ऐश्वर्य रतम मती, ऐश्वर्य रतन ऐश्वर्य में लीन, मति यानी हमारी बुद्धि सदा सबका आतिथ्य सत्कार करने में संलग्न हो, मेरी बुद्धि अध्यात्म तत्व में लीन रहे, ज्ञानी जनों से मेरा स्नेह भाव रहे और मेरी चित्त वृत्ति सदा परोपकार में रहे आदि। वहां तो उन्होंने इतना ही बताया था। अमित गति के श्रावकाचार में भी प्रत्येक पूजा के फल का कथन नहीं है। देवसेन के भाव संग्रह में प्रत्येक पूजा का फल बतलाया है। यथा जिनके यानी जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में दी गई जलधारा समस्त रज को शांत करती है। जो भव्य जीव जिनवर के चरणों में सुगंधित चंदन का लेप करता है वह स्वभाव से सुगंधित वैक्रिय शरीर प्राप्त करता है। जो देव के चरणों के आगे अक्षत के पुंज चढ़ाता है वह नियमनिधि सहित चक्रवर्तित्व प्राप्त करता है। जो सुगंधित पुष्पों से जिनदेव के चरण कमलों को पूजता है वह उत्तम देव होकर स्वर्ग के वनों में आनंद करता है। जो दही दूध घी से बनाए गए उत्तम नैवेद्य से जिनदेव के चरण कमलों को पूजता है वह उत्तम भोगों को प्राप्त करता है। जो कपूर और तेल से प्रज्वलित और मंद मंद वायु के झकरों से नाचते हुए दीपों से जिनके चरण कमलों को पूजता है वह चंद्र सूर्य के समान शरीर पाता है। जो शिलारस और अगुरु से मिश्रित धूप से जिन चरणों को पूजता है वह तीनों लोकों में शुभवर्तन, अभी उसके लिए क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाला है, पाता है। जो पके हुए तथा रस से भरे हुए नाना फलों से जिन चरणों को पूजता है वह इष्ट फल को पाता है। ये वहां उन्होंने क्या भाव संग्रह ने बताया। इस प्रकार प्रत्येक पूजा का फल कहा है वैसा ही इस ग्रंथ में भी कहा है। इस फल में केवल लौकिक फल की ही कामना है। आज जो पूजा फल द्रव्य चढ़ाते हुए बोला जाता है कि संसार ताप की शांति के लिए चंदन चढ़ाता हूँ, अक्षय पद की प्राप्ति के लिए अक्षत चढ़ाता हूँ आदि, वह फल आध्यात्मिक है। अतः ऐसा प्रतीत होता है मध्य काल में पूजा में लौकिक फल की भावना थी, पहले नहीं थी, फिर बीच में आ गई और फिर बाद में आध्यात्मिक उसमें फल बताया। उत्तर काल में उसे आध्यात्मिक रूप देकर पूजा का महत्व बढ़ाया है तथा आठ द्रव्यों से पृथक पृथक पूजा करने के बाद आठों द्रव्यों के मेल से जो पूजन होती है उसे अर्घ कहते हैं। इस अर्घ का कथन आशा दर्जी ने तो किया है किंतु उनसे पहले के उक्त ग्रंथों में इसका कथन नहीं है। आशाधर जी ने चारभाय स की व्याख्या करते हुए लिखा है, स अर्थात अर्घ अर्थात पुष्पांजलि पूजा विशेष के लिए होती है। आगे अथवा करके लिखा है, स पद से पूर्वोक्त इष्टार्थ का ग्रहण किया जाता है। उससे यह अर्थ किया जाता है, पूजक जो जो अभिमत वस्तु गीत आदि जिन भगवान के प्रति सम्यक रूप से प्रयुक्त करता है वह विशिष्ट गीत आदि वस्तु के अर्घ अर्थात मूल्य के लिए होती है, अर्थात उसे स्वयं उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इससे प्रतीत होता है उस समय तक अर्घ से पूजन का प्रयोजन स्पष्ट नहीं था तथा पूजा पद्धति में अर्घ का प्रवेश अष्ट द्रव्य जितना प्राचीन नहीं। शुरू में तो ये अष्ट द्रव्य भी नहीं थे, उस समय तो केवल वो दस भक्ति होती, सिद्ध भक्ति, अरिहंत भक्ति, आचार्य भक्ति वगैरह होती थी। अब कहीं कोई कोई ऐसी पद्धतियां शुरू हो जाती है, पता नहीं कहाँ कब शुरू होती है। और फिर जब ये फल और फूलों में जीव जंतु होते हैं, दीप जलाने में भी हिंसा होती है, तो फिर वो इनका निषेध करके वो तेरा पंथ उसकी भी वो प्रथा चली जाती। पहले तो ये फल भी फूल भी और पत्ते पान भी चढ़ाते थे। अभी दो ऐसी धाराएं चल रही है, 20 पंथ उसमें ये सब चलता है और 13 पंथ शुद्ध आमना ऐसे। आगे जिन पूजा की सम्यक विधि बतलाते हुए उसका लोकोत्तर फल कहते हैं, 31 नंबर की गाथा जो सागर धर्मामृत की है। चैत्यादौन्यस्य शुद्धे निरुपम निरौपम्य तत्तद्गुणौघ श्रद्धानासोऽयमर्हन् इति जिनमनघैस्तद्विधोपाधिसिद्धैः नीराद्यैश्चारुकाव्य स्फुरदननुगुणक्रामरज्जन्मनोभिर्भव्योर्चन्द्रिक्विशुद्धिम् प्रबलयतु यया कल्पते तत्पदाय। अभी उसका लोकोत्तर फल यहाँ बताते हैं। अविनाशी और असाधारण उन उन गुणों के समूह में अत्यंत अनुराग से, यानी जिनेन्द्र भगवान के गुणों में अत्यंत अनुराग अनुरक्त होकर, उस सर्पिणी के तीसरे और अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में। ये उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी क्या है मालूम है? हाँ आशा जी, क्या है आपको पता है? नहीं मालूम है। अच्छा देखिए मैं बताती हूँ, यहाँ भरत क्षेत्र की बात है। विदेह क्षेत्र में तो हमेशा ही तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं। जो हमारा यहाँ अवसर्पिणी का चौथा काल है, वैसे वहाँ हमेशा ये रचना रहती है। इस भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में कालों का परिवर्तन होता रहता है। ये छह काल बताए जाते हैं। यहाँ जब अवसर्पिणी ने उतरता हुआ, उत्सर्पिणी चढ़ता हुआ, उसमें पहला है काल वो उत्तम भोगभूमि वाला। यहीं पर उत्तम भोगभूमि थी। वो कितने सागर का है मालूम है? चार कोड़ा कोड़ी सागर, चार करोड़ गुना करोड़, उसको चार कोड़ा कोड़ी कहते हैं। आगे यूनिट क्या है उसका? सागर वर्ष। सागर कितना बड़ा है? दस कोड़ा कोड़ी पल्ल का, और पल्ल तो वो बहुत बड़ा है, उसका आगे कहीं उसका विशेष वर्णन आएगा। तो कहते चार कोड़ा कोड़ी सागर का पहला यहाँ काल था उत्तम भूभूमि वाला। उत्कृष्ट आयु तीन पल्ले की थी, हाइट वो 6000 धनुष थी ना, क्या थी? तीन कोस की थी। फिर दूसरा काल यहाँ पर मध्यम भूभूमि, तीसरा काल जघन्य भूभूमि, चौथा काल यानी वो चार कोड़ा कोड़ी, तीन कोड़ा कोड़ी, दो कोड़ा कोड़ी, पूरा ही अवसर्पिणी एक से छह तक मिलकर दस कोड़ा कोड़ी होता है। उसमें से तो नौ कोड़ा कोड़ी गए, अब एक कोड़ा कोड़ी सागर में चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल है। पांचवा और छठा 21,000 और 21,000 वर्ष का है, और ये चौथा काल जो है वो उतना कम करो एक कोड़ा कोड़ी सागर में, हाँ 42,000 वर्ष कम। पहले दूसरे और तीसरे काल में यहाँ तो चौथे गुणस्थान तक का तो पुरुषार्थ हो सकता था, और जीव मरकर सारे देव में चले जाते थे, मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में और सौम्य दृष्टि सौधर्म ईशान में। यहाँ जब चौथा काल शुरू होता है तो यहाँ धर्म की शुरू, धर्म की नहीं, वहाँ धर्म तो था परंतु अभी मुनि अवस्था होना, तीर्थंकर यानी अरिहंत सिद्धावस्था होना, मोक्ष का रास्ता यहाँ शुरू हो जाता। पहले भोगभूमि तो एक केवल स्वर्ग की ओर ही रास्ता था। यहाँ की बात है भोगभूमि की बात, यानी यहाँ भरत क्षेत्र की बात है। चौथे काल में हमारे यहाँ पहले तीर्थंकर हुए आदिनाथ, फिर क्रम से 24 तीर्थंकर हुए महावीर तक, और उसके बाद यहाँ पांचवा काल चल रहा है। तो पांच, अभी हमारा पांचवा काल चल रहा है।
पांचवा काल एग्जैक्टली कभी से तीर्थंकर महावीरस्वामी भगवान के बाद,
मोक्ष के बाद,
मोक्ष के बाद तुरंत शुरू होता है।
3.5 वर्ष के छीनते हैं अभी। वहाँ उस काल में जन्मे हुए कुछ मुनिराज, कुछ लोग तो बाद में भी मोक्ष गए, परंतु वो चौथे काल के थे। उनका निर्वाण तो जैसे गंधर्व का हुआ, सुधर्म स्वामी का हुआ, जम्मू स्वामी का हुआ, तो बाद में भी मोक्ष गए, परंतु वो थे तो चौथे काल के थे। अब इस काल में मुनि तक का पुरुषार्थ हो सकता है, सातवें गुणस्थान तक, छठा सातवें, परंतु श्रेणी चढ़ने का पुरुषार्थ नहीं होगा। अभी ये प्रत्येक काल में शरीर की रचना कैसी होती है, क्या क्या बातें होती है, उसके बहुत विस्तार है, उसमें हम नहीं जाएंगे। यहाँ चौथे काल में तीर्थंकर आदि हुए थे अवसर्पिणी के। अभी पांचों और छठे के बाद यहाँ वो प्रलय वगैरह होता है, वो से आपने सुनी होगी बातें। फिर उत्सर्पिणी, ہمارا جو ابھی کا جو چھٹا ہوگا اس کو وہاں پہلا کہیں گے, یہاں کا جو پانچواں اس کو دوسرا کہیں گے, یہاں کا جو چوتھا تھا وہ نیچے سے الٹا جا رہے نا تو تیسرا کہیں گے, تو وہاں تیرتھنکر آدی ہونا شروع ہو جائے گا. چھٹے کال میں تو کوئی دھرم کی بالکل پروتی نہیں, کوئی سمے درشی نہیں, کچھ نہیں, اور پھر وہ ہلکے ہلکے پانچویں کال میں پروتی دھرمانوراگ روپ کی ہو جائے گی. یہاں جیسے اترتے کال میں تیسرے کال میں کھل کر ہوتے تھے, ویسے وہاں پانچویں کا جو چڑھنے والا دوسرا کال اس میں وہ کھل کر ان کی اتپتی ہوگی, اس کے تو بہت ڈیٹیلس ہے. تو وہاں کے تیسرے اور یہاں کے چوتھے کال میں تیرتھنکر ہوتے ہیں. ابھی ہم یہاں پڑھیں گے, دیکھو اسر پیڑھی کے تیسرے اور اوسر پیڑھی کے چترتھ کال میں ہونے والے یہ تیرتھنکروں کا یہاں ورنن چل رہا ہے. چونتیس اتیشے سہت اور سموسرن میں آٹھ پراتیہار سہت وراجمان. یہ سموسرن میں وراجمان تو تیرتھنکروں کی بات ہے نا, یہاں چوبیس تیرتھنکر ہوتے ہیں ان کی بات ہے. تتھا تتوپدیش سے یعنی ان کی جو دیویہ گدھنی کھرتی ہے اس کے دوارا بھویہ جیووں کو پوتر کرنے والے یہی وے ارہنت ہے. اس پرکار نردوش پرتیما میں, یہاں تو ساکشات ارہنت ہمارے سامنے نہیں ہے, ہم مندر میں جاتے ہیں مہاویر بھگوان کی مورتی ہے, شانتی ناتھ کی ہو, نیمناتھ کی ہو, ارناتھ کی ہو, آدی ناتھ کی ہو, تو یہی یہ بھگوان ہے جو ساکشات سموشرن میں وراجمان تھے. تو کہتے نردوش پرتیما میں, تو پرتیما بھی نردوش, ابھی وہ تو کس طرح سے وہ وراجمان وغیرہ کی جاتی ہے, تو اس میں نردوش کہنے کا ایک یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کھنڈت نہیں ہونی چاہیے. ایک بات وہ تو ودھی کے انوسار تو رچا, اس کی تو پرتیشٹھت ہونی چاہیے, دوسری اس کے اوپر کوئی وستر دھاگا بھی نہیں, کچھ نہیں, نہ وستر نہ النکار نہیں, اس کے اوپر تو چندن اور پھول بھی نہیں ہونا چاہیے, مورتی کے انگ کے اوپر نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ نردوش پرتیما میں اور اس کے ابھاؤ میں, یہ تو پوجا کے لیے, یدی ہم کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں مندر بھی نہیں ہے, تو یہ پدھتی کیا ہوئی کہ اکشت آدی میں لونگ یا اکشت میں استھاپنا کی جاتی ہے پوجا کے لیے بس, اور پھر اس کا وسرجن بھی ہوتا. تو کہ اکشت آدی میں جن دیو کی استھاپنا کر کے پاپ کے ہیتو دوشوں سے رہت تتھا نشپاپ سادھنوں سے تیار کیے گئے جل چندن آدی سے دوشوں سے رہت, دوش رہت یعنی جل لینا ہے تو وہ پراسف چھنا ہوا, تھوڑا سا گرم کیا ہوا ایسا جل ہونا چاہیے, نردوش سادھنوں سے تیار بھی چندن ہے تو وہ بھی جو اس کو ہاں تو اس میں بھی کوئی جیو جنتو نہیں ہے, اس کا ساودھانی پوروک بنانی چاہیے. آدی سے سندر گدیا پدیاتمک کاویوں میں ورنت مہان گنوں کے سموہ میں من کو انورکت کر کے اپنا من ان کے گنوں پرتی لگانا ہے تو ان کے گنوں کا سمرن کریں گے کاویہ میں کریں گے یا پدیاتمک کریں گے, کرتے ہوئے پوجن کرنے والا بھویہ سمیک درشن کی وشدھی کو بلوتی بناتا ہے, یعنی اور بڑھتی ہے وشدھی اس کے اس کال میں بڑھتی ہے. جس درشن وشدھی کے دوارا وہ تیرتھنکر پد کو پراپت کرنے میں سمرتھ ہوتا ہے, یہ سمیک درشن کی وشدھی بڑھانا اس کو درشن وشدھی نام دیا ہے. کسی جیو کے وہ تو ہم نے دیکھا نا سولہ کارن بھاونا ہوتی ہے جو تیرتھنکر پرکرتی کے بند کے یوگی جو پرینام ہوتے ہیں.
یہاں پر ٹائٹل جو دیا ہے جو 31 نمبر کا ہم نے شلوک کا ارتھ دیکھا اس کے اوپر آگے جن پوجا کی سمیک ودھی بتلاتے ہوئے پوجن کرنے کے بعد اس کا لوکوتر فل کرتے ہیں, یعنی یہ نشچے جو پوجا کریں گے وہ تو جو کر رہے ہیں وہ تو ہے لوکی کا پیشہ تو ساتھ والی بات بتا رہے ہیں,
اس میں تو وہ تیرتھنکر پرکرتی کا بندھ تک کر سکتا ہے, اتنا یہ لوکوتر پھل بتایا اس کا. और उसमें भी विधि क्या बताई, तो प्रतिमा निर्दोष चाहिए और फिर दोषों से रहित और निष्पाप साधनों से चाहिए। ये जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो भी निर्दोष होने चाहिए, रासुक होने चाहिए, उसमें आरंभ हिंसा आदि नहीं होने चाहिए। विशेषार्थ यह जिन पूजा की विधि है, पूजा स्थापना पूर्वक की जाती है और स्थापना तदाकार भी होती है और तदाकार भी होती है, इसका अर्थ देखते हैं।
स्थापना पूर्वक की जाती है, ये जो स्थापना है जैसे जिनको हम कहते हैं कि मूर्ति की जो स्थापना पंच कल्याण द्वारा जो की जाती है वैसी मूर्ति होनी चाहिए, इसका अर्थ क्या है? जिस मूर्ति की स्थापना नहीं की है पंच कल्याण के द्वारा, जिसने उसकी स्थापना नहीं की है वह मूर्ति भी पूजनीय है, इसका अर्थ क्या है? केवल का पशु है या अन्य कोई भगवान का फोटो होगा वह भी पूजनीय नहीं है, ये बात है। अभी जो आगे की बात है तदाकार और अतदाकार,
मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूजनीय नहीं कहते अभी अपने पिताजी का कि माता जी का जो भी फोटो है वो फोटो भी ऐसे देखे तो पूजनीय, हम तो खाली हाथ जोड़ते तो ऐसे भी उस मूर्ति को खाली हाथ जोड़ा जाता है, अरे मूर्ति क्या वो जो फोटो है उसमें क्या बात है?
आपका कहना है कि जैसे हम माता पिता के फोटो को देखकर पूछते हैं
माने हाथ
नमस्कार कर,
नमस्कार
यहाँ पर भी नमस्कार कर, तो दोनों नमस्कार में कुछ अंतर है?
अंतर जरूर है
क्या है?
लेकिन नहीं वो तो लौकिक माता पिता
बस, वो तो उनको भगवान बोल के नहीं नमस्कार कर रहे, यहाँ तो हम उनको भगवान समझ कर नमस्कार कर रहे। आपने हाथ जोड़ा वो नहीं है, क्यों जोड़ा तो भगवान है ऐसा समझ कर, तो ये अपनी समझ गलत है। वहां तो वो वितरागी है ऐसा है वैसा है, अपने माता पिता को देखकर हमारे मन में ये भाव तो नहीं आते, पूज्य भाव जरूर है कि इन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें अच्छी जगह पे मतलब मार्गदर्शन किया जो भी होता हो, लेकिन हम भगवान को यानी उसकी फोटो को जब नमस्कार करते हैं तो वो भगवान समझ कर नमस्कार करते हैं या हमारे माता पिता जैसे कोई है ऐसा बोलते हैं
समझ के ही
बस वही गलत है, भगवान समझ कर दुनिया में हमारे पर क्या करेगा, वो हमको इन पर हमारे दिगंबर मंदिर बहुत दूर है, या हमारे बाजू में भी तस्वीर सीतामढ़ मंदिर होंगे, हम जावे के नहीं जावे, यानी हम संडे को तो उधर जाते हैं लेकिन बाकी छह दिन क्या करेंगे, यानी ख्याल है ना, उसको भी भगवान मान के हम नमस्कार करना पड़ता है, ये बात योग्य नहीं है। अब ये तदाकार और अतदाकार की बात आप समझे,
देखो जब ये अष्टद्रव्य से पूजन बोली जाती है तो शुरुआत में हमें पता है कि स्थापना बोली जाती है, फिर एक एक द्रव्य चढ़ाने का उसका जो अर्घ लिखा होता है काव्यात्मक उसको बोला जाता है, फिर उसके बाद वो विसर्जन आदि सब पश्चात हो जाता है। तो यहाँ कहते पूजा जब की जाती है तो स्थापना पूर्वक की जाती है, यानी अपने भावों में ये भगवान यहाँ आप पधारिए, ऐसे भगवान तो कुछ आने वाले है ही नहीं है, वो तो वो सारे 24 तीर्थंकर तो मोक्ष चले गए, अपने भावों में हम उनको यहाँ स्थापना करते हैं, आह्वान करते कि यहाँ आइए तिष्ठिए, भवो भवो वशत, यानी यहाँ मेरे पास रहिए, और फिर उनकी हम पूजा करते हैं। अब ऐसे तो साक्षात सामने जो मूर्ति विराजमान है जो स्थापना की हुई है पंच कल्याण पूर्वक, तो वहां तो वो साक्षात भगवान जैसे हम उनकी विनय करेंगे। एक बार अब कैलेंडर की फोटो की बात करते हैं तो उसको में तो कितना अभिनय हो जाता है,
फोटो तो ऐसे अभी मंदिर में गुरुदेव का फोटो यहाँ तो फोटो कहाँ का फोटो भी लेता है, आपने देखा होगा
गुरुदेव का फोटो देखा, गुरुदेव भगवान बोलते हैं तो फोटो नहीं लगाएगा,
नहीं
लगाई हो तो गलत है,
तो वो तो
गुरुदेव का इतना बड़ा फोटो लगाया, कुंतीदाचार्य का इतना बड़ा फोटो लगाया, हम लोग माने मैं तो जाके ऐसे हाथ सभी को जोड़ता हूँ, आपके हिसाब से वो गलत है?
नहीं नहीं
अभी वहाँ भगवान मानकर तो नहीं पूजा हो, जैसे आप माँ बाप को करते हैं वैसे इनको करते हैं, क्योंकि उनसे हमें ये शास्त्र का अभ्यास मिला है,
स्वामी जी जो है वो तो हमारी शिक्षा गुरु है, तो गुरु भी नहीं है, कौन से विद्या कथा की चुपड़ी के अभाव गुरु
यानी मुनिराज नहीं है वो, मुनि वाले यानी मुनिराज नहीं है, देव गुरु शास्त्र वाले गुरु नहीं है वे।
पूजन
कर रहे हैं तो फिर गलत, न उनको अर्घ्य चढ़ाया जाता है ना आरती की जाती है।
आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ,
क्योंकि वहाँ सब माने मंदिर में रोज जाते हैं
और हाथ
जोड़ते हैं,
यहाँ जो करते हैं करने दो। अब मैंने कहा कि हाथ
देखो हाथ जोड़ने में अब
अभिनय नहीं है,
न अभिनय है और न ही उनको कोई दोष है, क्योंकि उनसे हमें मार्ग मिला है, उनको देकर हमें उनकी स्मृति डायरेक्ट आती है, तो हम हाथ जोड़ते हैं, परंतु भगवान के साथ रखकर हाथ नहीं जोड़ना है। क्या मैं यही बात
तो मैं आगे जाके पूछूंगा आपको, नहीं इन जनरल आगे जाके मैं भी स्वयं भगवान बनने वाला खात्री है, तो फिर आज ही पूजे चालू करो ना। अगर कहीं आपको ऐसा मिलता है आगम में लिखा हुआ, जैसे अभी हमारे श्रेणी राजा भविष्य में तीर्थंकर होने वाले, ये आगम की बात है, ऐसा अगर हमें कुछ मिलता है आगम का प्रूफ
फिर भी वो श्रेणी राजा की पूजा नहीं की जा सकती, भविष्य के तीर्थंकरों की करेंगे हम, उनको आज स्थापना करके उनके उस भविष्य के तीर्थंकरों को हम पूजन करेंगे, श्रेणी राजा की पूजन नहीं हो सकती है, वो चौथे गुणस्थान वाला था, अभी तो पहले नरक का नरक ही है। ये पूजन ये व्यवहार है और वो व्यवहार देखकर होता है, क्या कहा
व्यवहार है,
पूजन ये व्यवहार है और वो सामने किस पर्याय में है, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनि हो या अरिहंत भगवान हो उनके अष्टद्रव्य से पूजन हो सकती है, चौथे या पांचवें गुणस्थान वर्तियों की पूजन करना ये अष्टद्रव्य से पूजन करना ये निश्चित है।
ये आप जो बता रहे हैं ये बात उपमा में भी हमने बताई,
वहां पर भी बताई, देवलाली में शिविर में भी बताई, कोई उनके आरती उतारता है वहां चावल चढ़ाता है तो बिल्कुल दोष है। अभी क्या वो तो कुछ न कुछ नई प्रथा हमने कुछ किया लगता है, फिर आरती उतारना ये वो सब चालू हो जाता है। परंतु वो सिद्ध अवस्था को करते हैं, जो अभी जो है उस अवस्था को देखकर नहीं कर रहे, उस समय की सिद्ध अवस्था को याद करके हम उसको नमस्कार करते हैं, नहीं तो कुछ निगोद में पड़े निगोद को थोड़ी नमस्कार, उस अवस्था को हम नमस्कार करते हैं, यानी उस अवस्था वाली द्रव्य, उस द्रव्य में जो अवस्था प्रकट होगी तब उनको नमस्कार, उसका नमस्कार हम आज कर सकते हैं उनको मन में लेकर बुद्धि में लेकर। ये पूजा स्थापना पूर्वक की जाती है, और स्थापना तदाकर भी इसका अर्थ देखते हैं। ये स्थापना क्या है तो ये निक्षेप के चार प्रकार बताए जाते हैं, कौन से चार है,
नाम स्थापना
नहीं, हाँ
स्थापना द्रव्य
देखो नाम, इसको निक्षेप कहते हैं, जो वस्तु में रखना निक्षेप करना, हाँ नाम रखा क्या, हमारा बच्चे का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, नाम भी रखो सर्वज्ञ रखो, वो सर्वज्ञ नहीं है परंतु नाम हम अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, वहां जरूरी नहीं कि उसमें वो गुण हो, यह है नाम निक्षेप। वस्तु में कोई ना कोई नाम रखते, क्यों रखते हैं, व्यवहार चलाने के लिए, मुझे वहां से पेन मंगवाना है, वो लेके आओ, वो क्या लेके आओ, तो उस चीज का नाम हमने पेन रखा है तो ये पेन लेके आओ, इससे लौकिक व्यवहार चलता है। अब स्थापना, किसी एक चीज में किसी अन्य वस्तु का संकल्प करते हैं उसको कहेंगे स्थापना। वहां तो पाषाण की मूर्ति है, स्टैचू था अभी तक, तो अभी उसमें हम पंच कल्याणक उनके द्वारा उसमें वो ये महावीर भगवान है इसी स्थापना की, तो ये उसको स्थापना कहते हैं। अब इसमें दो बातें हैं कि तदाकार और अतदाकार, जैसे मनुष्याकृति है ऐसे हमने वो पाषाण की मूर्ति बनाई तो उसमें हम तदाकार स्थापना की। अब कहीं कहीं अन्य आकार वालों में भी उसकी स्थापना करेंगे तो क्या कहेंगे, अतदाकार। जैसे शतरंज के वो खेल में एक हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, वो ऊंट कैसा है, राजा कैसा है, वजीर कैसा है, तो उसका पर्टिकुलर शेप बनाया है, उसमें हमने स्थापना की, मान लिया हमने। तो हाथी क्या हाथी के जैसे आकार वाला तो ही नहीं है, तो वो अतदाकार स्थापना। पहले के जमाने में आपने देखा होगा कोई पूजा में बैठे है और स्त्री नहीं है वहां, कहीं गए माए वो सुपारी रखते थे, स्थापना की बात है। आजकल तो क्या हो रहा है, वो इंटरनेट पर वो विवाह भी चलते, एंगेजमेंट भी चलते। तो ये अतदाकार, यानी यहाँ ये पद्धति चली कि वहां सामने भगवान की मूर्ति नहीं है तो हमने वो लौंग या कुछ, वो एक ऊंचा एक आसन था, ये स्थापना ठोना ही कहते उसको, उसमें वो रख के ये हमने वहाँ संकल्प किया भगवान हम उसमें विराजमान करें, फिर वो पूरी पूजा वहाँ बोली जाती है। इसका निषेध भी हुआ है बाद में, ये सदाशिवजा जी वगैरह उन्होंने इसका निषेध किया था इस स्थापना के, क्योंकि साक्षात सामने भगवान है तब ऐसी स्थापना मत करो, ऐसा उनका कहना था, नहीं करना, सामने भगवान है तो उसमें क्यों करें। नहीं, इसमें तो भाव में तो स्थापना तो बोलना है, स्थापना का जो छंद है वो तो बोलना है, मतलब तो वो बोलकर हम चावल चढ़ाते हैं, वो चढ़ाना, वो स्थापना है, वो चावल में भगवान है, ऐसा संकल्प मत करो।
कोई कोई बोलते हैं अभी सामने है तो ये तीन लाइन बोलनी
नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं बोलना, क्योंकि हम अपने भावों में उनको, हाँ, जो सामने साक्षात है
और आप, हाँ, तो आप कैसे बोलते,
उसको बोलना आप, परंतु ऐसे चावल में ये भगवान है ऐसा मत सोचो।
आप भले हाथ मत करो, लेकिन भले आप चावल यहाँ लगाओ,
चावल तो हम चढ़ाते हैं उनको, हाँ, बाद में चढ़ाते हैं कुछ पूरा बोलने
का,
हाँ।
वो
अपने मन में जैसे हम 24 तीर्थंकरों की पूजा है या देवशास्त्र गुरु की है तो उनके गुण हमें, यानी हमारा मन हमारे भाव में अन्य कोई विचार नहीं आवे। अभी हमने साक्षात भगवान को यहाँ बुलाया, आपके घर में कोई मेहमान आते, कोई फिल्म एक्टर आएगा तो उसको छोड़कर आप दूसरा कुछ करने लगे जाए, क्योंकि उसको पूरा ध्यान देते वहाँ पर। तो यहाँ हमने भावों में भगवान को पधराया है तो पूरे उसके प्रति हम, अरे हाँ, उसका मन के एकाग्रता वहीं पर लगाकर उन्हीं के गुणों का अनुराग करते हुए हम पूजा करें, ये बात वहाँ होती है।
अब यहाँ जो निषेध जो बताया,
वो तमाम
उसकी स्थापना जो कर रहे हैं,
अभी वो भी क्या है, कोई पद्धति किसी विशिष्ट हेतु से शुरू होती है, हाँ, करते हैं और फिर बाद में उसका कुछ गलत रूप हो जाता है। वो वैसे तो अभी जैसे निर्माले भी नहीं खाने में यूज करते, वैसे वो भी, हाँ, मतलब बाद में उसका विसर्जन भी तो हो जाता है उस बात। अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये तदाकार ने उसके आकार की और अतदाकार ने अन्य कोई भी आकार वाली चीज। सोमदेव ने अपने उपासकाचार में पूजक के दो भेद बताए, दो भेद किए, एक पुष्प आदि में पूजक की स्थापना करके पूजन करने वाला और दूसरा प्रतिमा का अवलंबन लेकर पूजन करने वाला। उन्होंने फल पत्र पाषाण आदि में तथा अन्य धर्म की मूर्ति में स्थापना करने का निषेध किया। क्या कहते हैं, क्योंकि हम क्या है आजकल बहुत सहूलियत वाले हुए ना, हमारे फ्रेंड ने बुलाया अपने दशलक्षण में, उनका भी त्योहार रहता है तो हमारे घर में आ जाओ, हमारे भगवान आए हैं तो क्या करना, वहां जाके हाथ जोड़ना और मन में नमोकार मंत्र बना, तो हमने उसमें स्थापना कर दी क्यों, या नहीं भी किया तो हमने मन में अपने भगवान को याद किया, तो ये करना उचित है कि नहीं उचित, हाँ? क्यों आशा बेन, میں نے تو بھگوان کو نمسکار کیا اور ہاتھ جوڑے اس کے سامنے. مایاچاری کس سے کر رہے؟ اپنے سے. ہم پونا میں کون سے سال گئے؟ 80 یا 84 کچھ سال میں ہم پونا گئے تھے. 80 میں پریوشن پرو چالو تھا وہاں. رویوار پیٹ کے مندر آپ نے شاید پونا میں کوئی گئے ہوگے تو وہاں ایک سیت پال مندر ہے, تو اس میں میں پروچن کرتی تھی اور ان کا وہ گروار پیٹ کے مندر میں ہوتا تھا روز. تو ایک بھائی نے پروچن نہیں پوچھا, میں رتن گرن شوکاچار لیتی تھی تو انہوں نے پوچھا کہ ابھی ایسا ایسا ہوتا ہے ابھی وہاں, تو آجو باجو تو کیا دروازے کے باہر ہی وہاں بہت بڑا گنپتی بیٹھا ہے, کہ ہم ایسا جاتے رہے ہیں, ہم ایسا کرتے, چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو میں نے بولا جو ہمیشہ ان کے منہ سے بھی آپ نے بہت بار سنی ہوگی اسٹوری, کہ کوئی پتی اپنے استری سے کہتا ہے چلو ہم گھومنے جائیں گے, وہ کہتی مجھے ابھی ٹائم نہیں ہے, تھوڑا آپ جا کے آئیے تو مجھے گھر میں کام ہے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے, وہ جلدی کام نپٹا جاتے ہیں اور اس کو معلوم ہے پتی کہاں گھومنے گیا تو چلی جاتی. تو کیا دیکھتی ہے, وہ کسی انیہ استری کے ساتھ وہ گھوم رہا ہے, ہاتھ میں ہاتھ لے کے ایسے کمر میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہا ہے. تو بہت آگ بگولے ہو جاتی ہے اور گھر میں آنے پر اس کے ساتھ بہت غصہ کرتی ہے, تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کیا کیا, میں تو ایسا ہی مان رہا تھا کہ تو ہی ہے میرے بازار. تو یہ آپ کو چلے گا کہ نہیں چلے گا, اسے میں نے اس کو پوچھا. تو یہاں تو دوسرے جیسے کہتے ہیں کدیو ہے ادیو جو کچھ ہے, اس میں دیو پنا کی کوئی بات ہی نہیں ہے. ویترا کی سروگیتا تو وہاں ہے ہی نہیں ہے اور اس کو بھگوان مان کر ہم مایاچاری کر کے اریہنت کا نام لینا چاہتے, تو یہ ایسا ہی ہے. دوسری بات, آپ ہاتھ جوڑتے ہیں, آپ کے بچے نے دیکھا کہ آپ اس کا نمسکار کر, تو کیا رہا؟ اور یہ نمسکار کیوں کر رہے ہیں؟ آشا سے, بھے سے, سنیہ سے, لوبھ سے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے. کائے کا سنیہ سنیہ سے, لجا سے, یہ کیا کریں گے لوگ, کیا کہیں گے؟ باقی سب کر رہے ہیں, ہم نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ مجھے تو یاد ہے پونا میں تھی ہماری تو ساری براہمنوں کی شالا ہے اسکول, میں تو پہلی دوسری میں تھی تبھی یاد ہے ہم کو, کبھی دیہو میں رہ جاتے تھے, آلندی میں رہ جاتے تھے, سارے بھگوانوں کے نہیں ٹورس یا جو پکنک وہیں لے جاتے تھے, تو سبھی بچے وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے تھے. میں نے کبھی ہاتھ نہیں جوڑے کیونکہ وہ سنسکار تھے گھر کے کہ اپنے بھگوان ہیں اور باقی سب خود ہیں. وہاں تو کتنا اسکولوں میں تو یہ سب رام رکشا وغیرہ آدھی سب پڑھاتے تھے, میں نے وہ تو سارے دھرم کا ہی, اور اس زمانے میں کتنا واتاورن ہوگا. ابھی آج تو کیا سب کاسموپولیٹن ہیں, الگ الگ دھرم کے سب لوگ آتے ہیں. سکھاتے ہیں نا, کیا کرے, اور پھر وہ اسکول میں سب کرتے تو کرنا پڑتا ہے لوگوں کو, ایسا بھی ہوتا ہے. تو بچوں کو شروعات سے اگر یہ سنسکار ہو تو بچے بھی اس کو اچھی طرح سے کر, ان کو وہ کیوں کرنا کیوں نہیں کرنا اس کا سمجھا کر اس کو اگر بات بتائیں گے, ایسا نہیں کہ ایسے ایسا نہیں کرنا, زبردستی سے کچھ نہیں ہوگا, اس کے پیچھے کا کارن اس کو پتا ہو تو چھوٹا بچہ بھی, اس کو بھی وویک تو ہے کہ نہیں, ضرور وہ پالن کرے. دیکھو تو انہوں نے بھی پھل پتر پاشان میں یا انیہ دھرم کی مورتی میں استھاپنا کرنے کا نشیدھ کیا ہے. دونوں کی ودھی بھی الگ الگ کہی ہے. جو پرتیما میں استھاپن نہیں کرتے ان کے لیے ارہنت سدھ آچاریا اپادھیائے سادھو سمے درشن سمے گیان اور سمے چارتر کی استھاپنا کر کے پوجن کرنا بتلایا ہے, اور جو پرتیما میں استھاپنا کر کے پوجن کرتے ہیں ان کے لیے ابھیشیک پوجن استون جپ دھیان اور شکت دیوتا کی آرادھنا ان چھ ودھیوں کو بتلایا ہے. آپ جو کہتے ہیں نا استھاپنا کی بات اور اس کی بات, وہ اس میں لکھی ہوئی شاستر گرنتھ شکت دیوتا ہے نا, ہمارے جو گرنتھ راج ہے. اس کو سرسوتی کہتے, اس کو شاردا کہتے ہیں, پرنتو اس کا ارتھ وہ بھگوان کی وانی جو ابھی ہمارے گرنتھوں میں اپلبدھ ہے وہ, यानी कोई स्त्री की मूर्ति बना के उसकी पूजा करने का नहीं बताया, क्योंकि सरस्वती बना के कोई मूर्ति की कल्पना से मूर्ति बनाते हैं और ये सरस्वती उनकी पूजा करो तो वो बराबर नहीं। वो तो क्या पहले वो बंधन इन्हें वस्त्र में लपेट कर रखते थे,
ऐसे ही समझते वो वस्त्र में शास्त्र लपेटा जाता है,
उसकी बात है, परंतु वो आठवा नौवा द्रव्य कहाँ से आया?
अष्टद्रव्य से पूजन करते थे, नौ द्रव्य से
वस्त्र चढ़ाने की बात क्या, आप वस्त्र में लपेट कर उसके बराबर हिफाजत रखो वो बात अलग है, वहाँ चढ़ाने की बात कहाँ से शुरू हुई पता नहीं। हम वो छंद टाल देते हैं, हाँ वो तो ये पद्धति चली है।
नहीं
बचपन में तो हमें ऐसा ही
कपड़े के लिए जिनवानी लपेटते,
परंतु वो तो जिनवानी को चढ़ाने की बात कहाँ आई ये बात आती है ना, वो जमाने में कैसी शुरुआत हुई होगी पता नहीं है। वो तो है ना, वो ज्ञानत राय के उसमें तो सब ये नैवेद्य आदि का कितना वर्णन आता है, वो तो 20 पंथियों में प्रथा है ही। अब आगे बढ़ेंगे। वसुनंदी ने अपने श्रावकाचार में इस काल में अतदाकार स्थापना का निषेध किया। देखो ये बात आई ना, ये तो श्रावकाचारों में पूजन पद्धति के ऊपर उस काल में अलग अलग बातें वहां कोई बताई गई है, उसका निषेध भी किया है। यहाँ लिखते हैं अतदाकार का निषेध, यानी वो पुष्प में लौंग में वो स्थापना का निषेध कर दिया। आशाधर जी ने उसका निषेध नहीं किया, संभवतया पहले सामने प्रतिमा के न होने पर तंदुल आदि में स्थापना करके भी पूजन की जाती थी। अस्तु पूजन करने से पहले निर्दोष मूर्ति में जिनदेव के गुणों की श्रद्धा पूर्वक स्थापना की जाती है, यानी वितराग सर्वज्ञता है, उनके अन्य जो गुण है उनका चिंतन किया जाता है। व्यवहार से दर्शन विशुद्धि आदि भावना प्रमुख पांच कल्याणक और निश्चय से अनंत ज्ञान आदि उनके असाधारण गुण हैं। क्या कहते हैं, यानी जो भगवान बने हैं तीर्थंकरों की बात है, तो पूर्व अवस्था में दर्शन विशुद्धि आदि भावना भाई थी, उसके फलस्वरूप जो तीर्थंकर प्रकृति बंधी थी उसके उदय में वो तीर्थंकर बने, ये व्यवहार से उनके गुण कहे उसमें उन्होंने। उनके पांच कल्याणक हुए, नाम मालूम है आशा पांच कल्याणकों के? हाँ हाँ, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, फिर दीक्षा कल्याणक, फिर केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। ये कल्याणक क्यों कहते हैं इसको, इंद्र आके ये पूजन करते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो गर्भ में अवतार हुआ तो इंद्र आकर ये गर्भ कल्याणक की पूजा वगैरह करते हैं, तो इसको कल्याणक कहते हैं। उनका अंतिम गर्भ है और इस भव में वो तीर्थंकर होकर मोक्ष हो जाने वाले, इसलिए वो उसकी विशेषता है। तो ये उनको गुणों में लिया व्यवहार से, पांच कल्याणक होते आदि आदि, और निश्चय से अनंत ज्ञान आदि उनके असाधारण गुण है। निश्चय से उनके अनंत ज्ञान आदि में क्या क्या लेंगे वीरेश भाई? बहुत अच्छा, ये जो अनंत चतुष्टय है आदि में सभी अनंत गुण ले लेना। उन गुणों में अनुराग वश ही जिनेन्द्र पूजा की जाती है। जिनेन्द्र की पूजा क्योंकि उनके तो केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, इतना उनका अनंत वीर है, अनंत सुख है, उनका स्वरूप हम चिंतन करते हैं और उस गुणों के प्रति हमें अनुराग है, अहोभाव है, इसलिए हम उनकी पूजन करते हैं। गुणों में अनुराग का ही नाम भक्ति है, ये भक्ति है, नहीं तो अन्य मति उनके देवों की भक्ति करते, इसलिए हम अपने देव की करते हैं, है ना। और ये भगवान कुछ दे देंगे, ऐसी भावना पूर्वक भक्ति कर। अज्ञानी तो क्या क्या नहीं करते। भक्ति पूर्वक स्थापना के बाद, देखो भक्ति पूर्वक स्थापना, पहले तो स्थापना हुई है ना। कुंकुंदाचार्य ने अरहंत भगवान की स्थापना किसको की कही है मालूम है? हमने तो पढ़ा था अष्टपाउली यहाँ पर, के भूल गए। अरहंत भगवान की स्थापना करना, इन्हें क्या करना? अरहंत भगवान को अभी निकाल के देखना, अष्टपाउ भाव पाउड में है क्या, बोध पाउड में, बोध पाउड में अरहंत भगवान को जीव समास पर्याप्ति प्राण गुणस्थान वो सब उस पर 20 के प्रवेश प्ररूपना समझ कर अरहंत का स्वरूप निश्चित करना, ये अरहंत की स्थापना है। कौन? स्वयं कुंकुंदाचार्य कहते हैं। तो यहाँ कहते भक्ति पूर्वक स्थापना के बाद, इसका अर्थ भक्ति पूर्वक उनके गुणों का स्मरण करके ये उनकी स्थापना हुई। शुद्ध द्रव्य से जिनेन्द्र की पूजा की जाती है, क्योंकि वो मूर्ति में स्थापना तो ऑलरेडी हुई है पंचकल्याण के बाद। यहाँ भक्तिपूर्वक स्थापना करना है, भक्तिपूर्वक उनके गुणों का स्मरण करना। अकेले हो तो 20 प्ररूपना की बात छोड़ो, उनके जो अनंत ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, केवल दर्शन का स्वरूप क्या है, अनंत वीर्य का स्वरूप क्या है, इसकी भी चिंतन करना है। ये भक्तिपूर्वक स्थापना के बाद शुद्ध द्रव्य से जिनेन्द्र की पूजन की जाती है। द्रव्य की शुद्धता दो बातों पर निर्भर है, द्रव्य ने जो चढ़ाते हैं उस द्रव्य की बात ये हम कल करेंगे चर्चा। द्रव्य की शुद्धता की बात हम कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे नो कालो सोवाणी स्तकनम सदा देतहु।